सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण वहि समुत्तिर्णये जिनेणम्यूं वेयणमहाहियारं विविहियारं परूवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 12वीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें भाव वेदना भाव विधान के बाद दूसरी चूलिका चल रही है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 170 पर आ गए। 170 हमने ये षटस्थान वृद्धि की बात चल रही थी ना, तो उसमें उन्होंने देखा है, देखो कल जो हमने पढ़ा था वो किसको कहते हैं, चार किसको कहते हैं, उसकी बात उसको फिर पढ़ते हैं। यहाँ मिला 170 पृष्ठ दूसरा पैराग्राफ, अनंत भाग वृद्धि की उर्वंक संज्ञा है, यानी ऊ लिखने पर अनंत भाग वृद्धि समझना चाहिए, उसको उसकी सेनानी कहते चिन्ह। असंख्यात भाग वृद्धि की चतुरंक यानी चार अंक, संख्यात भाग वृद्धि की पंचांक, संख्यात गुण वृद्धि की षडंक, असंख्यात गुण वृद्धि की सप्तांक और अनंत गुण वृद्धि की अष्टांक संज्ञा जानना चाहिए। ये अंकात्मक संज्ञा कही, जिसका नाम रखते हैं वैसे इसको अंक ही उसका नाम हो गया। इस संज्ञा से एक षटस्थान संदृष्टि की योजना करनी चाहिए, जैसे हमने ऊ चार ऊ पांच इस तरह से उसका पूरा कोष्टक बना लेते हैं, उसको कहते हैं उसकी योजना करनी, रचना करनी चाहिए। अब यहाँ प्रकृत का कथन करते हैं। अब उसको कथन करने के पहले शंकाकार पूछता है, कांडक सहित कांडक के वर्ग प्रमाण जो अनंत भाग वृद्धि प्रक्षेप एक भागहार के द्वारा लाए गए हैं वे सदृश नहीं हैं। क्या कहते हैं, अनंत भाग वृद्धि होती है, तो पहली बार पहले कांडक में जितने अनंत भाग वृद्धि हुई है तो उसमें से तो एक्स्ट्रा हुई, परंतु उसमें हम उसको पिशुल और पिशुला पिशुल करके अलग अलग रखा है, फिर भी प्रक्षेप जो है वो समान है सर्वत्र। परंतु दूसरी बार जब अनंत भाग वृद्धि होती है ना दूसरे कांडक के लिए, तो उसमें तो वो प्रक्षेप ज्यादा है ना उसमें, तो कहते हैं अनंत भाग वृद्धि जो कांडक प्रमाण बताए लिखा है ना, कांडक सहित कांडक के वर्ग, यानी कितने कांडक हुए हैं, एक दो कांडक नहीं, एक कांडक दो कांडक तीन कांडक, तो कांडक के वर्ग प्लस वन, कांडक का वर्ग यानी सुच्चंगुल के असंख्यात भाग का वर्ग करो प्लस वन उसमें कर दो, तो इतने तो कांडक हुए हैं, तो हर एक कांडक में वो जो प्रक्षेप का प्रमाण है वो अलग अलग है। तो कहते वो भागार वो सदृश नहीं है, क्योंकि उनका अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि स्वरूप से अवस्थान है। असंख्यात भाग वृद्धि के प्रक्षेप भी सदृश नहीं होते, क्योंकि उनका परस्पर की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि स्वरूप से अवस्थान है। उसमें भी एक कांडक प्रमाण अनंत असंख्यात भाग वृद्धि भी एक कांडक बार हुई है, और अनंत भाग वृद्धि एक कांडक का वर्ग प्लस एक कांडक, तभी जाके संख्यात भाग वृद्धि हुई थी। असंख्यात भाग वृद्धि भी एक कांडक बार हुई, तब संख्यात भाग वृद्धि एक बार हुई, उसी की यहां बात पूछ रहे हैं। इसीलिए उनका एक भाग हार से लाना योग्य नहीं है, एक भाग हार लाकर ये पूरा ही संख्यात भाग वृद्धि का क्या क्या मिलाना उसमें वो बात आई थी। यदि कहा जाए कि पिशुल व पिशुला पिशुल आदिकों के पृथक पृथक भागहारों को उत्पन्न कराकर भागहार की हानि कराकर एक भागहार के द्वारा वे लाए जा सकते हैं तो यह भी घटित नहीं होता कि हर एक अलग अलग का प्रपोर्शन निकाल कर उसको घटित करते जाओ तो कहते ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संख्यात क्रियायुक्त पुरुष के असंख्यात क्रियाओं में व्यापार का विरोध है। यानी हम संख्यात क्रियाएं कर सकते हैं, असंख्यात नहीं कर सकते क्योंकि वो असंख्यात बार हुए ना, एक कांडक में भी असंख्यात है, इसलिए वो नहीं हो सकता कहते हैं। इस कारण पूर्व प्ररूपित भागहार की प्ररूपना घटित नहीं होती, ये शंकाकार की शंका है। क्योंकि एक ही भागहार में उसने हमें सब पूरा जगन्य स्थान से इस संख्यात भाग वृद्धि का स्थान लाना है पहला, उसके लिए एक भागहार बनाया था, तो ऐसा होता नहीं, ये शंकाकार की शंका है। समाधान, यह सत्य है किंतु ये टोडरमल जी की भी ऐसी ही पद्धति है ना, तू कहे सो सत्य, परंतु फिर उसमें जो कोई बात है विशेष वो बताएंगे। प्रक्षेपों की असमानता की विवक्षा न कर बुद्धि से उन्हें सदृश कल्पित कर भागहार की प्ररूपना की जा रही है। हमें समझाना है तो थोड़ा जो डिफरेंस है उसको गौण करके उनको एक समान मानकर यहाँ भागहार एक लाकर बताया है। शंका, इस असत्य भाषण से कर्मबंध कैसे न होगा? समाधान, यह असत्य भाषण नहीं है क्योंकि इसमें एकांत आग्रह का अभाव है। सर्वथा ऐसा ही है, ऐसे कोई वहां बता नहीं, वो तो मान्य कर रहे हैं कि यहाँ कोई डिफरेंस है, परंतु उसको गौण कर दिया। इस वचन से मिथ्या ज्ञान भी नहीं उत्पन्न कराया जा रहा, यानी ऐसे कथन करने से कोई मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति तो नहीं हो रही है, क्योंकि उसके द्वारा असंख्यात वर्षों से पृथक पृथक त्रैराशिक करके उत्पन्न कराए गए भागारों से उत्पन्न ज्ञान के समान श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या कहते, एक एक का अलग अलग हम उसमें से माइनस करके भागार अलग अलग निकालो तो कितना समय लगेगा? तो असंख्यात वर्ष तो असंख्यात वर्षों से पृथक पृथक त्रैराशिक करके, यानी ये इतने सारे जो हमने असंख्यात भेद देखे उसको अलग अलग त्रैराशिक करते जाओ और फिर वो भागार निकालो, तो वही बात ये श्रुत ज्ञान के द्वारा अभी उत्पन्न कराते हैं। दूसरी बात, आचार्य शिष्यों के लिए समस्त सूत्रार्थ को नहीं कहते हैं क्योंकि वैसी सामर्थ्य नहीं है। ये समस्त सूत्रार्थ उसमें गर्वित होगा कि जब पूरा एक एक का अलग अलग करके भागा, परंतु उसकी सामर्थ्य नहीं है कहते ना आचार्यों के, ना वो सुनने वाले शिष्यों की, तो और नहीं है। शंका, तो फिर पूर्ण श्रुत ज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकता है? यदि नहीं बताते तो कैसे होगा? तो उसने आचार्य समझाएंगे तो श्रुत ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसा माना ना उसने। तो उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि अनुक्त अवग्रह, ये आपको याद है उक्त अनुक्त वगैरह 12 प्रकार, ये तो विषयों के 12 मति ज्ञान के विषयों के 12 भेद है। एक एक विध बहु बहु विध क्षिप्र अक्षिप्र निश्रुत अनिश्रुत ये उक्त अनुक्त, ऐसे जो 12 भेद है तो उसमें उक्त ने जो बताया है और फिर ज्ञान में आता है उसको उक्त कहते हैं, और नहीं बताया है वो ख्याल में ज्ञान में आ जाता है बिना बताए, उसको अनुक्त कहा है। अनुक्त मति ज्ञान, मति ज्ञान का जो भेद है उसको कहते अनुक्त अवग्रह इहा अवाय और धारणा, ये हर एक में उतने उसके भेद लेना, अनुक्त वाला भेद, उसके द्वारा वह उत्पन्न हो सकता है। यानी सामने वाले के बिना बताए भी हमें कुछ ज्ञान तो हो जाता है ना, थोड़ा बताए और हम अधिक का भी ज्ञान हो जाता है, उसको कहते हैं अनुक्त का ज्ञान होना। कहा भी है, ऊपर हम गाथा पढ़ेंगे, पन्नवण इच्छा भावा अनंत भागो दु अणभिलप्पाणम पन्नवण इच्छाणम पुनः અણંત ભાગો સુદણી બથો આચાર્ય પાદ માચષ્ટે પાદ શિષ્ય સ્વમેધયા તદ્વિદ્ય સેવયા પાદ પાદ કાલેન પચ્યતે. એ સંસ્કૃત હે, દેખો ફિર પડેંગે. આચાર્ય પાદ માચષ્ટે પાદ શિષ્ય સ્વમેધયા તદ્વિદ્ય સેવયા પાદ પાદ કાલેન પચ્યતે. પહેલે ઉપર કી જો તીસરી નંબર કી ગાથા હૈ ઉસકો હમ અર્થ ઉસકા દેખતે હૈ. પન્ન વણિજ્યા ભાવા, વચન કે અગોચર, યાને વચન કે દ્વારા જિસકા પાર નહીં પા સકતે, એસે વચન કે અગોચર અર્થાત કેવલ, યાને માત્ર કેવલ જ્ઞાન કે વિષયભૂત જીવાદિક પદાર્થોં કે અનંતવે ભાગ માત્ર. કેવલ જ્ઞાન કા વિષય તો સંપૂર્ણ લોકાલોક, ઉસકે સમસ્ત દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, ઉસકે સભી અવિભાગ પ્રતિચ્છેદ ભૂત વર્તમાન ભવિષ્યકાલ કે સબ કુછ આ ગયા ઉસમે, તો ઉસ ઇતના અનંત જાનતે હૈ, તો જીતના જાનતે હૈ જ્ઞાન કા જીતના વિષય હૈ ઉસકે અનંતવે ભાગ માત્ર પ્રજ્ઞાપનીય. અર્થાત તીર્થંકર કી સાતિશય દિવ્ય ધ્વનિ કે દ્વારા પ્રતિપાદન કે યોગ્ય હૈ. કેવલ જ્ઞાન કે દ્વારા જીતના જાનતે હૈ ઉસકે અનંતવે ભાગ કેવલ જ્ઞાની કે તીર્થંકરો કે દિવ્ય ધ્વનિ મેં આતા હૈ, અનંતવા ભાગ. ક્યોંકિ અગોચર એસી કિતની બાતે હોતી હૈ જો વચન મેં નહીં આ સકતી હૈ. તથા પ્રતિપાદન પ્રતિપાદન કે યોગ્ય ઉક્ત જીવાદિક પદાર્થો કા અનંતવા, ન કે ઉપર બિંદી લગાવો, અનંતવા ભાગ માત્ર શ્રુત નિબદ્ધ હૈ. ગોમટસાર મેં ભી એસી ગાથા આતી હૈ, વહાં તો લિખા હૈ કે જીતના કેવલ જ્ઞાની જાનતે ઉસકા અનંતવા ભાગ ઉનકી વાણી મેં આતા હૈ, જીતના અનંતવા ભાગ આયા હૈ ઉસકે અનંતવે ભાગ ગણધર કે જ્ઞાન મેં આતા હૈ. ગણધરો ને જીતના જાના ઉસકા અનંતવા ભાગ, વો શ્રુત કી રચના હોતી બારા અંગો કી. અભી ઉસમે કિતના કટતે કટતે ઇતના સા થોડા રહી ગયા હૈ, વો ભી હમારે તો બુદ્ધિ મેં નહીં આતા હૈ. ઓર હમ માનતે હમ તો 21વી સદી હૈ, હમ બહોત તરીકે કી હૈ. કેતે દેખો, પ્રતિપાદન કે યોગ્ય ઉક્ત જીવાદિક પદાર્થો કા અનંતવા ભાગ માત્ર શ્રુત નિબદ્ધ હૈ. શ્રુત મે નિબદ્ધ હૈ, ગ્રંથો મે ગૂંથા ગયા હૈ. હા, જ્ઞાન કી જ્યાદા મહાનતા હૈ ઓર ભાષા કી ઉતની લિમિટેશન હૈ, વચન કી લિમિટેશન્સ હોતી હૈ. હમ ભી અભી કોઈ ચીજ દેખે ઓર ઉસકો ડિસ્ક્રાઇબ કરો, કહેંગે વર્ણન કરો, તો વો પૂરા ભાવ ઉસમે નહીં ગ્રાસ કર સકતે. અપને ફીલિંગ્સ હમ શબ્દો મેં વ્યક્ત કરના ચાહે તો પૂરા નહીં કર સકતે. ઉસમે જો માઇનોરિટી, ઉસકી જો ડિટેલ્સ હૈ, ઉસકી જો સૂક્ષ્મતા હૈ, વો તો વચન મેં નહીં આ સકતી. થોડા કુછ ઇન્ડિકેટ કર સકતે હૈ. દેખો ફિર ભી કહેતે તો શિષ્યો કો કૈસે સમજ મેં આયેગા, તો કહેતે આચાર્ય એક પાદ કો કહેતે હૈ, એક પાદ કો શિષ્ય અપની બુદ્ધિ સે ગ્રહણ કરતા હૈ. યાને આચાર્ય કુછ થોડા બતાએંગે ઓર કુછ એસા હૈ કે શિષ્ય અપની બુદ્ધિ સે ગ્રહણ હોતા હૈ, ભલે નહીં બતાએ ફિર ભી ઉસકી બુદ્ધિ મેં વો આ જાતી, અપને આપ ખિલતી હૈ બુદ્ધિ વૈસે. એક પાદ ઉસકે જાણકાર પુરુષોં કી સેવા સે પ્રાપ્ત હોતા હૈ. યાને કોઈ વિશિષ્ટ અધ્યાત્મ કે જાણકાર હૈ ઉનકી સેવા સે પ્રાપ્ત હોતા હૈ. કહા એક પાદ સમયાનુસાર પરિપાક કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ, યાને વો એસી અપની જ્ઞાન કી યોગ્યતા સે વો ઉત્પન્ન હો જાતા હૈ. હમને વો ગણધર કે કિતની કિતની રિદ્ધિયા પ્રગટ હોતી હૈ બુદ્ધિ કી, જબ વો દીક્ષા લેતે હૈ અંતર્મુહૂર્ત મેં મન પરે જ્ઞાન આદિ સબ પ્રગટ હોતા હૈ, દેખા થા ના, તો ઉનકી ઇતની કેપેસિટી બઢ જાતી હૈ, તો સામને દિવ્ય ધ્વનિ ખીરતી હૈ ઓર ઇનકો યહાં જ્ઞાન હો જાતા હૈ. વહાં તો બીજ પદો કા જ્ઞાન હોતા હૈ ઓર યે બીજ બુદ્ધિ કી રિદ્ધિ હૈ, તો યે એક પદ કે દ્વારા ઉનો પૂરા વો ઉતના જો ચેપ્ટર હૈ ઉસકે અધિકાર હૈ ઉસકા જ્ઞાન હો જાતા હૈ. ઉસમે તો યે તો નિરક્ષરી વાણી હૈ, તો ઉસમે કુછ એસે એક એક શબ્દો કી રચના તો હૈ નહીં ઉસમે, વો અપને જ્ઞાન કી યોગ્યતા સે પૂરા જાન લેતે હૈ. अब ये शंका करके शंका हो गई, अब आगे बढ़ेंगे। देखो मयंक भाई, अभी पहले अनंत भाग वृद्धि हुई थी, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, अभी संख्यात भाग वृद्धि का प्रकरण चल रहा है। एक बार संख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर क्या होगा? फिर अनंत भाग वृद्धि होगी। एक बार संख्यात भाग वृद्धि हुई ना, फिर वो कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि होगी, फिर असंख्यात भाग वृद्धि होगी। वो चलेगा चक्कर, पूरा प्रोसेस चलेगा। इस संख्यात भाग वृद्धि के आगे सब जीवराशि भागहार होकर, क्योंकि अनंत वहां भाग करना है ना, उसके लिए जीवराशि से भाग देना। कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि स्थानों के अंतिम उर्वंक स्थान तक जाती है, फिर असंख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। क्योंकि अभी पहले से जैसे हमने ऊ चार और ऊ पांच तक आ गए, तो फिर दोबारा क्या होगा? ऊ चार होगा, यानी कांडक बार अनंत भाग वृद्धि, एक बार असंख्यात भाग वृद्धि, फिर एक कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि। इस प्रोसेस से असंख्यात भाग वृद्धि भी और एक कांडक बार होगी, तब जाके संख्यात भाग वृद्धि दूसरी बार होगी। अभी तीसरे लाइन में, तो असंख्यात भाग वृद्धि होने के लिए भागहार का प्रमाण क्या है? तो कहते हैं भाग, इसका भागहार असंख्यात लोक है। इस प्रकार कांडक सहित कांडक के वर्ग प्रमाण अनंत भाग वृद्धि स्थान और कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि स्थान जाकर द्वितीय संख्यात भाग वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है। कांडक सहित कांडक का वर्ग का अर्थ क्या है? ऊ चार हुआ तो एक कांडक हुआ, ऊ चार फिर दोबारा लिखा तो कांडक का वर्ग हुआ, फिर ऊ लिख के पांच लिखेंगे तो एक कांडक एक्स्ट्रा हुआ। पहले कांडक का वर्ग हुआ और फिर और एक कांडक हुआ। अनुक्त अवग्रह, हाँ, नहीं बताया हम, फिर भी जान लिया, और जो जान लिया वो धारणा में रह गया। हमें जो ज्ञान होता है, क्या कोई बताता है तभी होता है कि बिना बताए भी होता है? जब कोई पजल है हम, वो तो पेपर में आता है तो हम सॉल्व करते हैं, तो किसी ने बताया कैसे सॉल्व करना? अपनी बुद्धि से होता है ना। यानी कुछ बातें तो ऐसे होती है ना, वो उसने बताया, हाँ अरे हाँ हाँ ठीक है, फिर हाँ खाली सुनने के लिए धारणा नहीं है, जो कुछ जाना उसको धारणा में रखते हैं। क्योंकि अकेले कर्णेन्द्रिय के द्वारा ही धारणा नहीं होती है, पांचों इंद्रिय और मन के द्वारा जो जानते हैं उसके द्वारा धारणा होती है। जैसे मन में कल्पना की, क्या वो कल्पना कुछ कालों के बाद याद नहीं आती? हमने ऐसी ऐसी कल्पना की थी, ऐसा भी है ना। या मन से हमको रिमेम्बरेंस हो जाता है, उसमें तो फिर धारणा तो डायरेक्ट हो जाती है। तो अकेले सुने नहीं, देखी हुई की भी धारणा है कि नहीं है। ऐसे मैंने कल बताया ना था, मैंने 1953 में महामस्तकाभिषेक देखा था, वो देखे हुए की धारणा तभी हुई थी, तो अभी भी मुझे वो पूरे का पूरा याद है। तो ये देखी हुई की धारणा, ऐसे सब में लगाना, मति ज्ञान के सभी विषयों में। कोई चीज सूंघी थी तो उसके, अरे वहां ऐसा सुगंध आ रही थी या दुर्गंध आ रही थी, ये तो याद रह सकता है ना बाद में। तो धारणा में हो तो याद होगा। जिस जिस की हम याद करते हैं, जिस कोई विषय है, पंचेंद्रियों के विषयों को या मन के विषय को याद होता है बाद में, तो याद किसकी की जाती है? जो धारणा में है उसकी की। खाली सुनने की नहीं बात है, अभी हमने पढ़कर देखा, कोई पढ़ा है तो पढ़ी हुई बात भी याद आती है ना हमको। हम तो पुस्तक पढ़ते हैं स्कूल में, तो ऐसे करते हैं, पढ़ेंगे और फिर बाद में स्कूल परीक्षा में लिखेंगे। देखो देखो, धारणा में कुछ है नहीं का अर्थ क्या है? ये सुनी हुई ही बात धारणा में आ सकती है कि जानी हुई आ सकती है, जानी हुई आ सकती है। हाँ, तो उन्होंने पहले यहाँ अवग्रह, यहाँ अवाय धारणा है, ये सारे मति ज्ञान के भेद है, श्रुति ज्ञान के नहीं है, ये भेद सारे मति ज्ञान के। हाँ, तो आचार्यों ने नहीं बताया हुआ भी मति ज्ञान में जान लिया उन्होंने, पहले पहले ये समझना, बीज पद से हो, शास्त्रों के ग्रंथों के आधार से हो, अन्य भी कुछ हो, और फिर श्रुत ज्ञान में उसको, उस पर चलता है विचार। देखो ये तीसरी लाइन तक आए थे। इस प्रकार कांडक सहित कांडक के वर्ग प्रमाण, अनंत भाग, वृद्धि स्थान, अब दोबारा असंख्यात भाग वृद्धि स्थान कितने हुए, तो कांडक प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि स्थान जाकर द्वितीय संख्यात भाग वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है, दूसरी बार संख्यात भाग वृद्धि का स्थान उत्पन्न हुआ, परंतु जघन्य स्थान की अपेक्षा प्रथम संख्यात भाग वृद्धि स्थान से ऊपर और दुगुण वृद्धि से नीचे सर्वत्र संख्यात भाग वृद्धि ही होती है। क्या कहना चाहते हैं, अभी पहली बार संख्यात भाग वृद्धि हुई तो उसके बाद तो संख्यात भाग की ही वृद्धि होती जाती है, क्योंकि संख्यात भाग की यानी वो बहुत बड़ा अनंत, वो इतनी बढ़ गया है, अब उसके आगे जो अनंत भाग वृद्धि जाएगी वो भी एक्चुअली वो मूल का संख्यात्वा भागी, जघन्य स्थान की अपेक्षा वो संख्यात्वा भागी कह सकते हैं उसको, एक बात। दूसरा एक शब्द आया है दुगुण वृद्धि, दुगुण वृद्धि को क्या कहेंगे आप? हाँ, संख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान कह सकते हैं दुगुण वृद्धि, दुगुण वृद्धि से नीचे सर्वत्र संख्यात भाग वृद्धि होती है, दुगुण वृद्धि हुई तो हम क्या कहेंगे, संख्यात गुणा वृद्धि हुई, दो गुणा से ऊपर कितनी ही गुणा वृद्धि हो जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, संख्यात गुणा वृद्धि। अभी तक क्या कहते थे, संख्यात भाग वृद्धि, अब यहां से लेकर मिला उपरिम यानी इसके बाद वाली, दो तो संख्यात भाग वृद्धियां बता दी, इसके आगे उपरिम संख्यात भाग वृद्धियों की प्ररूपणा करने में अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि को छोड़कर प्ररूपणा करते हैं, क्योंकि आसान बनाने के लिए, अभी जघन्य स्थान की अपेक्षा संख्यात भाग वृद्धि के कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, संख्यात भाग वृद्धि वाला एक प्रक्षेप मिला या दो प्रक्षेप मिलाए, तीन प्रक्षेप मिलाए, तो प्रक्षेप का जो संख्यात्वा भाग है उसको अभी हम संख्यात्वा करना, अभी तो संख्यात भाग वृद्धि संबंधी का पिशुल कहेंगे, पिशुल का अभी संख्यात्वा भाग करेंगे तो संख्यात भाग वृद्धि संबंधी पिशुला पिशुल वो कहेंगे किसमें कितने मिलाना। कल हमने बहुत मेहनत की थी ना इसके ऊपर। हाँ देखो वह है, कहाँ गया है, यहां से लेकर उपरिम संख्यात भाग वृद्धियों की प्ररूपणा करने में अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि को छोड़कर प्ररूपणा करते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ी होने से उन वृद्धियों की प्रधानता नहीं है। संख्यात भाग वृद्धि के सामने वो पहले वाले अनंत भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि गौण कर देना, ये मेजर पुरुषण है, तो इसी की अपेक्षा से समझाएंगे गणित। अब द्वितीय संख्यात भाग वृद्धि की प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार अधस्तन उर्वंग के ऊपर, अभी दूसरी बार संख्यात भाग वृद्धि हो रही है, पहली बार हुई तो तब कितना हुआ था, ऊ चार ऊ पांच, वैसे और एक बार हुआ तभी भी ऊ चार ऊ पांच हुआ, तो पांच के पहले क्या हुआ था, ऊ हुआ था, लास्ट ऊ था, तो वो जो उर्वंग है द्वितीय बार संख्यात भाग वृद्धि होने के पहले वाला उर्वंग, उसके ऊपर वृद्धि प्राप्त द्रव्य को पृथक स्थापित करने पर शेष रहा जघन्य स्थान होता है। तो जो पांच के पहले वाला उर्वंक था, तो जघन्य स्थान से लेकर वहां तक जितनी वृद्धि हुई थी उसको उसमें से माइनस करेंगे तो वापस जघन्य स्थान पर पहुंचेंगे, क्योंकि हमको जघन्य स्थान की अपेक्षा संख्यात भाग वृद्धि का प्रोपोर्शन लाना है। ये बात समझ में आई? अब आगे फिर उसमें, उसमें ने जघन्य स्थान में उत्कृष्ट संख्यात का भाग देने पर एक संख्यात भाग स के ऊपर बिंदी लगाना। देखो जब संख्यात वा भाग निकालना है तो संख्यात का प्रमाण हमें कौन सा लेना है, अभी यहाँ दो तीन वगैरह नहीं चलेंगे, उत्कृष्ट संख्यात लेना है, संख्यात भाग लेना है ना, तो उसके लिए प्रमाण है उत्कृष्ट संख्यात। तो उत्कृष्ट संख्यात का भाग देने पर एक संख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप प्राप्त होता है। संख्यात भाग वृद्धि के लिए जो आवश्यक है यानी जघन्य स्थान डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट संख्यात इज इक्वल टू संख्यात भाग वृद्धि संबंधी प्रक्षेप। इस नहीं, द्वितीय स्थान की बात चल रही है, द्वितीय संख्यात भाग वृद्धि ही बात है, छह तक अभी हम पहुंचे ही नहीं ना, अनंत भाग वृद्धि वो हो गई, असंख्यात भाग वृद्धि चार और संख्यात भाग वृद्धि तक ही, अभी हम पांच तक ही है और पांच भी दूसरी बार आया है, अभी कांडक बार नहीं आया है। तो दूसरी के लिए क्या मिलाना पड़ेगा, पहली के लिए तो एक प्रक्षेप मिलाया, दूसरी के लिए दो प्रक्षेप और एक पिशुल। तो जैसे जघन्य स्थान को उत्कृष्ट संख्यात का भाग देने पर संख्यात भाग वृद्धि संबंधी प्रक्षेप आया, अब संख्यात भाग वृद्धि संबंधी प्रक्षेप को उत्कृष्ट संख्यात का भाग देंगे तो संख्यात भाग वृद्धि संबंधी पिशुल की संख्या आएगी, वो बताएंगे अभी। देखो इसको पृथक स्थापित कर, यानी वो जो संख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप आया था उसको पृथक स्थापित कर फिर उत्कृष्ट संख्यात का भाग देने पर, अरे सॉरी नीचे उत्कृष्ट संख्यात का पूर्व में पृथक स्थापित संख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेप में भाग देने पर एक संख्यात भाग वृद्धि पिशुल होता है। अंतिम लाइन पढ़ रहे हो मैं, इस प्रकार एक प्रक्षेप और एक पिशुल को ग्रहण कर, कर बराबर नहीं दिख रहा, उपरिम उर्वंक को प्रतिराशि करके मिलाने पर, उपरिम उर्वंक ने जो लास्ट गया था पांच के पहले वाला पर मिलाने पर द्वितीय संख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। अभी ये बात आसान है ना, अभी पहले जितने अनंत भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि उसको गौण कर दो, अभी हमको डायरेक्ट संख्यात भाग वृद्धि निकालना है। तो संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान लाने के लिए क्या कहा किया था, जघन्य स्थान को उत्कृष्ट संख्यात से भाग देकर जो संख्या आई थी उसको प्रक्षेप कहा, तो एक प्रक्षेप मिलाया तो पहला स्थान आया, दो प्रक्षेप मिलाएंगे तो केवल दो प्रक्षेप मिला के नहीं चलेगा, क्योंकि पहले स्थान में क्या हुआ है, वो जो ओरिजिनल तो जघन्य स्थान में मिला है ना उसको, तो जघन्य स्थान प्लस एक प्रक्षेप ये पहले स्थान की वैल्यू है, उससे दूसरे उसके आगे वाला स्थान उससे भी संख्यात्वा भाग है, तो जीव राशि यानी वहां की जो जघन्य स्थान है उसको भी संख्यात का भाग देना और प्रक्षेप को भी देना, इसलिए केवल प्रक्षेप मिला के नहीं चलेगा, प्रक्षेप का भी संख्यात्वा भाग उसके साथ मिलाना पड़ेगा, उसका नाम हमने यहाँ पिशुल जाना है, तो एक प्रक्षेप और एक पिशुल एक्स्ट्रा मिलाना। पहले स्थान के लिए एक प्रक्षेप मिलाया था तो दोनों प्रक्षेप मिलकर दो प्रक्षेप हुए और एक पिशुल होगा। तीसरे स्थान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन प्रक्षेप हो गए, अभी तीसरे स्थान पर है तो दो का संकलन निकालना, दो का संकलन क्या है, वन प्लस टू तीन होते हैं, तो तीन तो पिशुल हो जाएंगे और एक पिशुला पिशुल और मिक्स करना पड़ेगा। देखो सेकंड है, द्वितीय संख्यात भाग वृद्धि स्थान जघन्य स्थान की अपेक्षा दो संख्यात भाग वृद्धि प्रक्षेपों और एक संख्यात भाग वृद्धि पिशुल से अधिक होता है। अब ये संख्यात भाग को अलग रखेंगे तो पहले स्थान में एक प्रक्षेप बढ़ा, दूसरे स्थान में दो प्रक्षेप और एक पिशुल बढ़ा, फिर आगे के स्थान में पिशुला पिशुला और बढ़ेगा, और जो पिशुल होते हैं वो खाली एक एक नहीं बढ़ता, संकलन इतने बार, एक बार संकलन, जितवा नंबर का स्थान है ना जितने बार, उसमें एक कम करना, जिसको कहेंगे एक कम गच्छ या पद, और उसका एक बार संकलन करना, आगे भी पिशुला पिशुल, गच्छ नहीं, जितना नंबर का स्थान है उसको हमने गच्छ कहा। दसवां स्थान है, जैसे आपने दस नंबर पर घटाया तो दसवें नंबर पर घटाएंगे तो दस तो प्रक्षेप हो गए, दस में से एक कम करो नौ हो गए, नौ का संकलन निकालना, नौ का संकलन वन प्लस टू प्लस थ्री नौ तक, तो कितना हो जाएगा, पैंतालीस होता है, तो पैंतालीस तो पिशुल हो गए। अभी दसवां स्थान है तो दसवें से मैं दो घटाना और आठ का दो बार संकलन निकालना, आठ गुना नौ गुना दस और उसके नीचे वन इंटू टू इंटू थ्री, आठ त्रिक चौबीस पंचे, हाँ 120 हो जाएंगे, इतने तो पिशुला पिशुल हो जाएगी। फिर सात बार, ये सात का तीन बार संकलन करो, सात तीन घटाए ना, देखो आठ के लिए हमने दो बार लिखा था तो सात के लिए तीन बार करना ना, दस में से तीन घाटी करना और यहाँ तीन बार संकलन करना, तो वैसे चलेगी आगे आगे। हाँ गाड़ी, उसको तो काउंट करते हैं पिशुल और पिशुला पिशुल तक तो बताते हैं, आगे फिर चूर्णी समझाते हैं। देखो अब ये 173 पृष्ठ पर है, हम ये पैराग्राफ नया चालू करते हैं। इनकी जघन्य स्थान से उत्पत्ति को कहते हैं वह इस प्रकार, यानी वो कहां से मिला ना, ये लास्ट उर्वंक में कितना मिलाया वो बता दिया, लास्ट उर्वंक की अपेक्षा उन्होंने बता दिया, पूरा जघन्य स्थान से लेकर कितना बड़ा अभी उसको भी निकालते हैं, उसका अलग भागा, पूरा एक साथ भागार बताएंगे। उत्कृष्ट संख्यात के अर्ध भाग का विरलन कर, देखो यही बात इतना ही निकालने हैं परंतु अभी विरलन की भाषा में निकालेंगे, कल बहुत आसान हो गया विरल हमारा। उत्कृष्ट संख्यात के अर्ध भाग का विरलन कर, अभी हमको द्वितीय स्थान निकालना था ना, द्वितीय संख्यात भाग वृद्धि स्थान, तो हमको कितने प्रक्षेप चाहिए, दो प्रक्षेप चाहिए, जघन्य स्थान में हम वो उत्कृष्ट संख्यात का भाग देते हैं, हाँ तो एक प्रक्षेप आता है, दूसरी भाषा में क्या कहना है, विरलन कितना करना, विरलन कितने का करना है और उसमें कौन सी, हाँ भागहार का विरलन करना, यानी उत्कृष्ट संख्यात को एक 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 करके लिख दो और उसमें जघन्य स्थान समान समखंड करके दे दो, एक एक के प्रति क्या आएगा, भाग देने पर जो आता है वही आएगा, तो प्रक्षेप की वैल्यू आएगी, तो एक प्रक्षेप के लिए ये ठीक था, हमको दो प्रक्षेप निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो उत्कृष्ट संख्यात के बदले विरलन आधा करो और ये जघन्य स्थान को समखंड करके दे दो, तो दो प्रक्षेप एक साथ आ जाएंगे, अभी पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। देखो उत्कृष्ट संख्यात के अर्ध भाग का विरलन कर, जघन्य स्थान को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति दो दो प्रक्षेप प्राप्त होते हैं, ये नया भागार निकालना है ना, तो उसमें वो पिशुल की भी बात उसमें ऐड कर देंगे, अभी दोबारा दूसरा भी दूसरी एक संख्या को विरलन करेंगे, क्योंकि हमको वहां दूसरे स्थान के लिए पिशुल भी एक चाहिए, तो वो कैसे निकालना, तो पिशुल कैसे निकालते पहले हम ये सोचेंगे, एक प्रक्षेप को उत्कृष्ट संख्या से भाग देंगे तो एक पिशुल आएगा, अभी हमारे पास ऊपर के विरलन में कितने कितने आए थे प्रक्षेप, दो दो प्रक्षेप आए थे, तो एक प्रक्षेप को उत्कृष्ट संख्या में विरलित करते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक पिशुल आएगा, हमारे पास दो प्रक्षेप है तो दो गुना विरलन करो तो एक पिशुल आएगा, दो गुना विरलन करो ना यानी उत्कृष्ट संख्यात के बदले दो बार उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर दो और उसमें दो प्रक्षेप डिस्ट्रीब्यूट करो तो हर एक के प्रति एक एक पिशुल आएगा। वही बात अभी बताएंगे। देखो, फिर इसके नीचे दुगुणे उत्कृष्ट संख्यात का विरलन कर, वो बिंदी अस्पष्ट है। उपरिम एक अंक के प्रति प्राप्त, कितना प्राप्त था एक अंक के प्रति, दो प्रक्षेप थे, उसको समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति एक एक पिशुल का प्रमाण प्राप्त होता है। हमें पहले मालूम है क्या निकालना है, तो उसके अपेक्षा से वो विरलन का प्रमाण एडजस्ट करना है हमें। अब इसको, ये जो पिशुल है ना, इसको अभी ऊपर तो दो प्रक्षेप था और उसमें पिशुल भी ऐड करो तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, परंतु वो भागार में से कुछ कम करना पड़ेगा ना, ऐड किया तो भाग। तो क्या करना, देखो, इसको ऊपरी अंकों के प्रति प्राप्त द्रव्यों में देकर समीकरण करने पर हीन अंकों की प्ररूपणा करते हैं। क्या कहते हैं, हमने एक्स्ट्रा दिया है तो वहां कुछ उत्कृष्ट संख्यात वाला भागार था, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसमें से कुछ कम होना चाहिए, तभी जो भागहार दे के राशि आती है वो बड़ी हो जाती है। वही इस प्रकार देखो, हमारे पास दो विरलन है, एक ऊपर का विरलन उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण है और नीचे का विरलन दो बार उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण है। सॉरी, आधा आधा था, बराबर है, आपने करेक्शन किया, बराबर है। ऊपर का विरलन उत्कृष्ट संख्यात से आधा था और नीचे का विरलन दो गुना उत्कृष्ट संख्यात है, यानी नीचे का विरलन चार गुना ज्यादा है। ऊपर का आधा था और ये दो गुना है, आधे से चार गुना हुआ ना। अब पहले तो यहां कितने दो दो प्रक्षेप थे हर एक के प्रति, और नीचे के विरलन के हर एक के प्रति एक एक पिशुल आया। अब यदि हम ये एक एक पिशुल हमने ऊपर स्थापित कर दिया तो इतने बड़ी संख्या कहाँ से, तो इसमें से एक प्रक्षेप को कम कर दो, ये दो प्रक्षेप वाला जो डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, तो क्या होगा, जब इतने स्थान जाते हैं तो इसमें से एक कम हो जाता है उपरिम विरलन में से, यानी यहाँ उत्कृष्ट संख्यात नहीं रहकर एक कम हो जाएगा। इतने स्थान जाएंगे तो, परंतु ये बड़ा है ना, तो ये पूरा दो बार उत्कृष्ट संख्यात स्थान प्लस एक, इतना स्थान जाते उत्कृष्ट संख्यात प्लस दो, इतने स्थान जाते हैं तो यहाँ का एक अंक की हानि होती है, एक अंक कम होता है, एक अंक यानी इसके विरलन में से एक अंक कम होता है, उत्कृष्ट संख्यात में से एक कम हो जाएगा ये पूरे में अगर जाएंगे, क्योंकि हमने ये पिशुल 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 करके इतने लिए ना, इतने में से दो प्रक्षेप पूरे हो जाते हैं, यानी उत्कृष्ट संख्यात में से एक यूटिलाइज होता है। तो अभी इस त्रैराशिक कैसा होगा, दो बार उत्कृष्ट संख्यात प्लस एक स्थान जाएंगे तो ऊपर का एक स्थान कम होता है, यानी ऊपर के भागार में से एक कम होगा, परंतु यहाँ कितने कितने स्थान है, यहाँ उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण ही है, उत्कृष्ट संख्यात भी नहीं, उत्कृष्ट संख्यात का आधा है, ऊपर तो आधे ही विरलन किए थे इस बार हमने, तो यहाँ दो बार था उसमें एक मिलाया, टू प्लस वन थ्री नहीं समझना, ये दो बार उत्कृष्ट संख्यात प्लस वन, उसमें एक अंक की हानि प्राप्ति होती है, तो यहाँ उत्कृष्ट संख्यात का आधा ही है, तो आधे बार में कितने होगा, तो ऐसा त्रैराशिक करेंगे तो वन फोर से कुछ कम होगा। अब उसको उसको तो संख्या आधे उत्कृष्ट संख्यात में से माइनस करना पड़ेगा, उपरम के उपरिम विरलन में से उसको माइनस करना है। अभी इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा ख्याल में आएगा। देखो, वह इस प्रकार एक अधिक अधस्तन विरलन मात्र अधवान जाकर, अधस्तन विरलन था दो बार उत्कृष्ट संख्यात, उसमें एक संख्या और ऐड करो, एक ही संख्या ऐड करना है, इतने जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो उपरिम विरलन में वह कितनी पाई जाएगी, उपरिम विरलन था आधा, उत्कृष्ट संख्यात का आधा था। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर एक अंक का कुछ कम चतुर्थ भाग आता है, यानी वन फोर्थ से कुछ कम आता है। इसको उपरिम विरलन में से कम करके, उपरिम विरलन था ना, उत्कृष्ट संख्यात का आधा था, उसमें से ये 1/4 कम कर दो, खाली एक अंक का चतुर्थ भाग इतना ही कम करना है, नया भागार दोनों का मिलकर भागार निकालना था। देखो अभी तक तो आसान था, हमने जघन्य स्थान को उत्कृष्ट संख्यात का भाग दिया था तो एक प्रक्षेप आया था, और प्रक्षेप को फिर दोबारा उत्कृष्ट संख्यात का भाग दिया तो पिशुल आया। परंतु यहाँ तो क्या है, हमें दो प्रक्षेप और एक पिशुल चाहिए, उसके लिए जघन्य स्थान को डायरेक्ट हमें ऐसा भागार चाहिए कि जो डायरेक्ट हम भाग देंगे और हमको द्वितीय स्थान मिल जाएगा, उसके लिए इतने ये सारी ये विरलन करने की पद्धति बताई है। तो हमें डायरेक्ट भागहार कौन सा मिला, उत्कृष्ट संख्यात का आधा माइनस 1/4, कुछ कम 1/4। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये जो चतुर्थ भाग आया था ना कुछ कम, तो कहते हैं इसको उपरिम विरलन में से कम करके शेष का, शेष जो बचा यानी उत्कृष्ट संख्यात का आधा माइनस 1/4 जो बचा, उसका जघन्य स्थान में भाग देने पर दो प्रक्षेप और एक पिशुल प्राप्त होता है। ये डायरेक्ट अभी मिल गया हमको। फिर लब्ध को प्रतिराशीकृत जघन्य स्थान में मिलाने पर, हमको जघन्य स्थान से कितना बड़ा निकालना था, पहले हमने लास्ट उर्वंक में मिलाया था, अभी पहले जघन्य स्थान में मिलाना है। तो अभी प्रतिराशि किसको बनाया, बेस किसको बनाया, जघन्य स्थान को, और फिर उसमें वो जो मिलाएंगे, जो दो प्रक्षेप और एक पिशुल आया है वो उसमें मिला देंगे। द्वितीय संख्यात भाग वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है, ये दूसरा हुआ। फिर तीसरे के लिए तीन प्रक्षेप, तीन पिशुल और फिर एक पिशुला पिशुल, हाँ, तो इस तरह से वो ऐड करना। तो उसके लिए जितना जरूरी है उतना फिर विरलन वगैरह करेंगे। तो पहले में पहले वो संख्या तीन, हमको प्रक्षेप चाहिए, तीन प्रक्षेप चाहिए ना, तो क्या करेंगे, पहले तो विरलन हमने आधा उत्कृष्ट संख्यात का किया था, अभी 1/3 करना पड़ेगा, तो हर एक के प्रति तीन प्रक्षेप मिलेंगे। अभी तीन प्रक्षेप, हमको तीन पिशुल भी चाहिए, तो तीन पिशुल के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर हमारे पास तीन प्रक्षेप है, हाँ, तीन प्रक्षेप को उत्कृष्ट संख्यात से भाग देंगे डायरेक्ट एक बार, तो तीन पिशुल आएंगे ना, एक प्रक्षेप को भाग देंगे, एक प्रक्षेप को उत्कृष्ट संख्या से भाग देंगे तो एक पिशुल आया, तीन पिशुल डायरेक्ट आएंगे, अभी विरलन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं समझे, कोई संख्या ले दे ना हम फिक्स, जैसे 64 को हमने, चार का भाग दिया तो 16 आ गए, नहीं बनी नहीं, यहाँ ये गणित फिट नहीं होगा, तीन बार हमको लेना है ना वो, कोई संख्या तीन बार लेनी है, हाँ हाँ, नहीं 4 × 3 = 12, देखो जैसे 48 को हमने 4 का भाग दिया तो हमारे पास 4 × 3 = 12 आए, और 3 बार आए चार चार संख्या, और फिर उसका भाग करना है, ये डायरेक्ट ही समझे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उदाहरण के लिए पूरा पहले डिराइव करना पड़ेगा। देखो ऐसा सोचना आप, एक प्रक्षेप को हम प्रक्षेप ही लिखेंगे ना, एक प्रक्षेप को एक बार कोई x से भाग देते हैं तो पिशुल आता है, ये देखना, एक प्रक्षेप को कोई एक विशिष्ट x से भाग देते हैं तो एक पिशुल आता है, तीन प्रक्षेप को एक से ही भाग देंगे तो क्या होगा, तीन पिशुल आएंगे। यानी ये जो विरलन है तो उसको तीन बार करने की जरूरत नहीं है, उसको तीन बार करेंगे तो एक पिशुल आएगा, हमको तीन पिशुल चाहिए डायरेक्ट, है ना। हाँ, अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ तो कहते हैं इस प्रकार अंतिम संख्यात भाग वृद्धि स्थान तक सभी उपरिम संख्यात भाग वृद्धि स्थानों के भागहार की जानकर प्ररूपणा करनी चाहिए, तीसरे स्थान में चौथे स्थान में, इसे इससे आगे संख्यात गुण वृद्धि स्थान होता है। उन्होंने पहले अनंत भाग वृद्धि में तो बहुत सारा घटा कर दिखाया, संख्यात भाग वृद्धि में भी। अब यहाँ कहते हैं आगे जान लेना, अब अभी आप समझदार हो गए हो। अब संख्यात भाग वृद्धि क्रम से जघन्य स्थान से अनुभाग स्थानों के बढ़ने पर कितना अध्वान जाकर दुगुनी वृद्धि होती है, यह जतलाने के लिए प्ररूपणा करते हैं। अब दुगुनी वृद्धि को पहले बताएंगे, जब संख्यात गुणा वृद्धि में तो उत्कृष्ट संख्यात से गुणा करने पर होने वाला स्थान है, परंतु वो होने के पहले बीच में संख्यात्वा भाग संख्यात्वा भाग संख्यात्वा भाग जब बढ़ता चला जाता है तो जाके दुगुनी वृद्धि होगी, कहीं उसके भी दुगुनी होगी, कहीं उससे भी दुगुनी होती, तो बढ़ते बढ़ते जाकर वो उत्कृष्ट संख्यात तक हो जी, तभी हम कहेंगे उसको संख्यात गुणा वृद्धि वाला स्थान आया। उसके पहले संख्यात्वा भाग बढ़ रहा है तो संख्यात्वा भाग करके भी दुगुनी हो जाएगी ना बीच में, वो बात बताने चाहते। अकेले दुगुनी हुई तो उसको यहाँ संख्यात गुण वृद्धि नहीं कहे, वो स्थान वाला नहीं कहा उसको, फिर भी उसको दुगुनी वृद्धि के स्थान कह सकते हैं। जिसको हम षडंक कहते हैं वो कहाँ पर होगा, उत्कृष्ट संख्यात से गुणा करने पर वो स्थान आएगा। अब देखो देखो देखो, पांच का भी एक कांडक हो जाएगा, जैसे चार के एक कांडक होने पर पांच आया था, ऐसे बीच में पांच का कांडक होने पर फिर छह आएगा, परंतु वो छह आने के पहले बीच में ये सारे वृद्धि के स्थान है, संख्यात भाग वृद्धि के, पांच का कांडक हो रहा है तो संख्यात्वा भाग संख्यात्वा भाग संख्यात्वा भाग असंख्यात्वा भाग असंख्यात बार बढ़ रहा है, नहीं समझे, तो गुणित प्रमाण होगा कि नहीं होगा। जैसे दस का पांचवा भाग, दस का पांचवा भाग एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, चार बार हो, पांच बार हो, तो दुगुना हो जाएगा ना, खाली पांच बार होगा, परंतु पांचवा भाग सौ बार हो जाएगा तो गुणित प्रमाण में चला जाएगा। तो बीच में जो हमने देखा था दस से बीस हो जाएगा, बीस से चालीस हो गया, चालीस से अस्सी हो जाएगा, दुगुने दुगुने वृद्धि के स्थान हो जाएगा, बढ़ता है तो संख्यात्वा भाग, परंतु संख्यात्वा भाग संख्यात्वा भाग संख्यात्वा भाग संख्यात बार बढ़ेगा तो दुगुने हो जाएंगे। और यहाँ तो एक कांडक कितने का है, असंख्यात का है, सुचंगुल के असंख्यात भाग बार संख्यात भाग वृद्धि होगी तो ये संख्यात गुणा होने ही वाले ना, दो गुना चार गुना दस गुना आठ गुना जो कुछ है वैसे होने ही वाली है बीच बीच में। देखो इसको, इस वाक्य को फिर पढ़ते हैं, संख्यात भाग वृद्धि क्रम से जघन्य स्थान से अनुभाग स्थानों के बढ़ने पर कितना अध्वान जाकर दुगुनी वृद्धि होती है, तो ऐसे कितने स्थान जाएंगे तो दुगुनी वृद्धि होती है। हमने देखा ना दस का पांचवा भाग निकाला, दो 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 बढ़ेंगे दस में तो बारह हुए, चौदह हुए, सोलह हुए, अठारह हुए, बीस हुए, अरे तो दुगुनी वृद्धि हुई ना वहां पर। वैसे यहाँ कितने स्थान जाने पर जघन्य स्थान दुगुना होगा उसकी बात पूछ रहे हैं। वह इस प्रकार है, यहाँ अज्ञानी जनों के बुद्धि उत्पन्न कराने के लिए, देखो इसमें भी तीन अलग अलग कथन आएंगे, एक तो बिल्कुल स्थूल कथन, एक फिर थोड़ी सी गहराई और फिर एकदम सूक्ष्म बात, तो यह हमारे लिए पहली है। हाँ, तो तीन प्रकार से दुगुण वृद्धि की प्ररूपणा करते हैं। कैसे तीन प्रकार से प्ररूपणा की जाती है, तो कहते वह स्थूल सूक्ष्म और मध्यम के भेद से तीन प्रकार है। क्या प्ररूपणा, एक प्ररूपणा है तो स्थूल कथन है, दूसरी है वो मध्यम है और तीसरा है वो सूक्ष्म कथन है। उनमें पहले स्थूल प्ररूपणा कहते हैं, जघन्य स्थान के आगे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि स्थानों के बीतने पर दुगुण वृद्धि होती है। क्या कहते हैं? अभी हमने देखा 10 का एग्जाम्पल यहाँ बहुत सूट होता है। हमने 10 का पांचवा भाग निकाला तो 10 का पांचवा भाग कितनी बार बढ़ेंगे उसमें तो दुगुनी वृद्धि होगी, तो 5 बार उसमें उतने प्रक्षेप आए ना, तो संख्यात भाग वृद्धि के उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण प्रक्षेप चले जाएंगे तब दुगुनी वृद्धि होगी। एक्चुअली दुगुने से ज़्यादा होगी क्योंकि उतने उसमें पिशुल भी आएंगे, पिशुला पिशुल भी आएंगे, चूर्णी सब आएंगे, परंतु ये स्थूल कथन बता रहे हैं। स्थूल कथन ख्याल में आया? देखो उत्कृष्ट संख्यात जब स्थान चले जाते हैं आगे, संख्यात भाग वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान चले जाते हैं तो उत्कृष्ट संख्यात इतने तो प्रक्षेप आते हैं तो उसने आगे तो हमने दुगुनी वृद्धि कह दी। अरे परंतु उसमें उत्कृष्ट संख्यात माइनस वन इतने उसका संकलन करो, अभी उत्कृष्ट संख्यात का संकलन कितना होगा, उतने तो पिशुल आ जाएंगे। उत्कृष्ट संख्यात माइनस दो का दो बार संकलन करो उतने तो पिशुला पिशुला आ जाएंगे। माइनस थ्री का तीन बार संकलन करो उसने तो वो चूर्णिका आएगी। ऐसे वो सब पूरे लंबी चौड़ी उनकी फैमिली ले लेना साथ में, तो दुगुनी से भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। तो वहाँ पर कहेंगे दुगुण वृद्धि थोड़े पहले आती है, पहले तो स्थूल कथन कह दिया कितने स्थान जाने पर आता है, तो जितने का भाग दिया था पांचवा भाग कितने बार बढ़ेगा, 5 बार बढ़ेगा तो दुगुना हो जाएगा। वैसे यहाँ उत्कृष्ट संख्यात से भाग दिया था तो उत्कृष्ट संख्यात बार जब आगे बढ़ेंगे तब दुगुण वृद्धि होगी। ये देखो जघन्य स्थान के आगे उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि के स्थानों के बीतने पर दुगुण वृद्धि होती है। वो बीत दिख रहा है, बीतने पर, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण संख्यात भाग प्रक्षेपों से, संख्यात वा भाग प्रक्षेप है ना, यानी संख्यात भाग वृद्धि वाला प्रक्षेप, एक जघन्य स्थान के उत्पन्न होने से क्या कहते हैं, एक प्रक्षेप दो प्रक्षेप तीन प्रक्षेप, ऐसे उत्कृष्ट संख्यात प्रक्षेप लेंगे तो एक जघन्य स्थान उत्पन्न होगा। जैसे 10 का हमने पांचवा भाग लिया तो 2 है, तो ऐसे 2 2 2 5 बार लेते हैं तो जघन्य स्थान यानी 10 फिर दोबारा एक उत्पन्न होगा। वैसे ही उत्कृष्ट संख्यात बार प्रक्षेप मिलाएंगे तो जघन्य स्थान में और एक जघन्य स्थान मिल जाएगा, उतना प्रक्षेप से बढ़ेगा ना तो जघन्य स्थान दुगुना होगा, अविभाग प्रतिच्छेद वहां से 2 गुना हो जाएगा। तो कहते हैं उत्पन्न होने से वृद्धि जनित जघन्य स्थान के साथ, ये जो वृद्धि जनित यानी वृद्धि होने पर जो एक जघन्य स्थान इतनी वैल्यू बढ़ी है उसका ओग जघन्य स्थान उससे दुगुना देखा जाता है। अभी जो मिला है जघन्य स्थान, अभी जो वृद्धि प्राप्त है स्थान, वो पहले के जघन्य स्थान इतना है तो हम क्या कहेंगे उसको, दुगुना जघन्य स्थान हो गया तो उसको कहेंगे दुगुनी वृद्धि हुई। ये स्थूल कथन हुआ। शंकाकार, यह प्ररूपणा स्थूल कैसे है? उसका समाधान, ये दुगुना कैसा हुआ ये तो ख्याल में आया ना। हाँ, कहते कारण कि इसमें पिशुलादिकों को, पिशुलादिक में पिशुल पिशुला पिशुल, फिर चूर्णिका चूर्णी चूर्णा चूर्णिका, वो फिर आगे भी बहुत सारी बातें देखी ना हमने, छिन्न 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 वगैरह भिन्न 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 वगैरह सभी देखते हैं। छोड़कर प्रक्षेपों से ही उत्पन्न जघन्य स्थान से दुगुणत्व की प्ररूपणा की गई है। इसका अर्थ ख्याल में आता है, ये भाषा ख्याल में आ लेनी इतनी बात है। उसमें केवल प्रक्षेप ही मिला है तो कितने प्रक्षेप मिलने पर और एक जघन्य स्थान जितनी वैल्यू बढ़ी, तो कहते हैं उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण प्रक्षेप के मिलाने पर। तो ये बिल्कुल स्थूल कथन हुआ क्योंकि अन्य जो वृद्धि का जो है पिशुला पिशुल वगैरह उसको हमने छोड़ दें। अब मध्यम प्ररूपणा की जाती है वह इस प्रकार, यानी वो स्थूल तो अपने समझ में आए, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र संख्यात भाग वृद्धि स्थानों में, उत्कृष्ट संख्यात मात्र संख्यात भाग वृद्धि स्थानों के प्रथम स्थान से लेकर रचना करें। ये संख्यात भाग वृद्धि स्थान कितने आने वाले हैं? कांडक बार, तब जाके संख्यात गुण वृद्धि होने वाली है। उसमें से अभी हमने कितना लिया? उत्कृष्ट संख्यात बार ले लिया, पहले उसमें से उतने ही लिए, उसकी रचना करेंगे। उनमें से उत्कृष्ट संख्यात का 3/4 भाग मात्र अध्वान आगे जाने पर दुगुण वृद्धि होती है। पहले हमने कितने आगे जाकर बताया था? उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण जाने पर, उत्कृष्ट संख्यात बार जाने पर। अब कहते हैं उत्कृष्ट संख्यात का 3/4 भाग जाने पर ही दुगुणी वृद्धि होती है। अब उसको उन्होंने संदृष्टि लेकर समझाया, अंक संदृष्टि। उत्कृष्ट संख्यात के लिए संदृष्टि में 16 अंक ग्रहण करने चाहिए। उत्कृष्ट संख्यात का जघन्य स्थान में भाग देने पर संख्यात भाग वृद्धि होती है। उसको जघन्य स्थान में मिलाने पर प्रथम संख्यात भाग वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है। 2 प्रक्षेप और 1 पिशुल को जघन्य स्थान में मिलाने पर द्वितीय संख्यात भाग वृद्धि स्थान वृद्धि करना, ऊ हो गया उसको वृ करना। देखो ये 16 बार करेंगे ना, उत्कृष्ट संख्यात के लिए 16 संख्या ली उन्होंने, और हमको कितने चाहिए जिसका हमको 3/4 निकालना है? 16 का, यानी 16 स्थान लेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे 16 स्थान ले लेंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं? पहले स्थान में कितना मिलाया था? 1 प्रक्षेप मिलाया था। दूसरे स्थान में क्या मिलाया? 2 प्रक्षेप और 1 पिशुल मिलाया। फिर कहते हैं 3 प्रक्षेप, 3 पिशुलों और 1 पिशुला पिशुल को जघन्य स्थान में प्रतिराशि करके मिलाने पर तृतीय संख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। ये तो हमें पता है ना, हमें 16 स्थान तक देखना है। 4 प्रक्षेप, क्योंकि अभी चौथा स्थान है। 6 पिशुल क्यों लिया? 4 - 1 = 3, 3 का संकलन होता है 6, तो 6 तो पिशुल लिए। और 4 पिशुला पिशुल, क्योंकि 4 - 2 = 2 होते हैं, 2 का 2 बार संकलन करना है, 2 का 2 बार संकलन कैसे निकालना? 2 × 3 / 1 × 2, 3 आ जाएंगे ना, तो 3 पिशुल, अरे 3 × 2, हाँ सॉरी, 2 बार करना था ना, तो 4 पिशुला पिशुलो और पिशुला पिशुल पिशुल, अभी उसको चूर्णिका कहने के बदले हुए वो पिशुल के ही नाम बढ़ा दो, जघन्य स्थान में प्रतिराशि करके मिलाने पर चतुर्थ संख्यात भाग वृद्धि स्थान होता है। इस प्रकार आगे भी ले जानकर ले जाना चाहिए। कहाँ तक? 16 तक, क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट संख्यात हमने 16 मान लिया है। विशेष इतना है कि प्रक्षेप 1 से लेकर 1 अधिक क्रम से बढ़ते हैं, ये तो पता है। पिशुल 1 कम बीते हुए अध्वान के संकलन स्वरूप से बढ़ता है। 1 कम होता है ना उसके संकलन, 1 कम करके उसका संकलन करना। पिशुला पिशुल 2 कम गए हुए अध्वान के द्वितीय बार संकलन स्वरूप से बढ़ता है। पिशुला पिशुला पिशुल 3 कम गए हुए अध्वान के तृतीय बार संकलन स्वरूप से जाते हैं। इस प्रकार आगे भी कहना चाहिए, उनकी यह संदृष्टि है। ये मूल में देखो कहते हैं, ऊपर जो दिखाया है, हाँ क्या डॉट्स क्या बताते हैं? हाँ बिल्कुल, नीचे से ही ऊपर को देखते हैं हमने हमेशा। तो पहले में एक ये दो बिंदी है ना, तो एक प्रक्षेप मिलाया और एक पिछला पिछला। देखो यहाँ देखते हैं, आगे उसको समझाया। संदृष्टि में यहाँ प्रक्षेप 12, पहले लॉइड्स नीचे से ऊपर, क्योंकि मध्यम संदृष्टि ने 3/4, 16 का 3/4 12 हो गया, तो प्रक्षेप 12 लिए हमने। ख्याल में आता है, 3/4 स्थान जाने पर दुगुना होता है, तो 12 प्रक्षेप लिए। अब कहते पिशुल 66, ये किसका क्या होगा, 66 संख्या कैसे आई होगी, 12-1 उसका संकलन, यानी 11 का संकलन, 11 × 12/2 66, तो पिशुल 66 ये 11 का संकलन धन है, 11 का संकलन है, और 10 का 2 बार करना, 10 × 11 × 12/1 × 2 × 3, तो हाँ वो 6 × 12 हो जाएंगे, 11 × 22 × 10 220 आ जाएगी। पिशुला पिशुल 220 मात्र है। इस प्रकार स्थापित करके दुगुनी वृद्धि की प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार, यानी इसकी सबकी टोटल होकर दोगुनी वृद्धि होती है। यानी पहले हमने कहाँ पर वृद्धि होती कहे देखा था, 16 जब हो गए, ये स्थूल कथन क्या था कि 16 स्थान जाने पर दुगुनी वृद्धि होती है। अब मध्यम कथन कर रहे हैं तो कहते 3/4 स्थान जाने पर होते हैं, तो 16 का 3/4 होते हैं 12, तो 12 तो प्रक्षेप मिलाएंगे और 66 पिशुल मिलाएंगे और 220 पिशुला पिशुल मिलाएंगे, सबकी टोटल दुगुनी हो जाएगी। शंका, उत्कृष्ट संख्यात के 3/4 भाग यानी 16 का 3/4 12 होता है, इतने मात्र प्रक्षेप है, इनको पृथक स्थापित करके फिर यहाँ उत्कृष्ट संख्यात के 1/4 भाग मात्र सकल प्रक्षेप होते हैं, तो दुगुनी वृद्धि का स्थान होता है, परंतु इतना है नहीं, अतएव यहाँ दुगुनी वृद्धि नहीं उत्पन्न होती है, यानी 3/4 भाग में ही दुगुनी वृद्धि नहीं हो सकती, ऐसा कहना है। शंका है, समाधान नहीं, क्योंकि पिशुलों की अपेक्षा उत्कृष्ट संख्यात के भाग मात्र प्रक्षेप पाए जाते हैं। पिशुलों को हम इकट्ठा करेंगे, इतने पिशुलों का, कितने पिशुलों का एक प्रक्षेप होगा, हाँ, जिससे भागकर हमने एक पिशुल पाया था। हमने पहले क्या देखा था, प्रक्षेप डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट संख्यात इज इक्वल टू एक पिशुल, प्रक्षेप डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट संख्यात इज इक्वल टू पिशुल। अभी उल्टा करो, हमें एक प्रक्षेप चाहिए, तो उत्कृष्ट संख्यात इतने पिशुल ले लो तो हमने एक प्रक्षेप मिल जाएगा, तो हमको दुगुनी वृद्धि के लिए 4 प्रक्षेप चाहिए। बराबर, इसके इसके उत्कृष्ट संख्यात को हमने 16 मान लिया है, इसको 16 यानी 16 पिशुलों का एक प्रक्षेप हो जाएगा। हमें 12 प्रक्षेप तो हमारे पास है, हमको और 4 प्रक्षेप चाहिए, बराबर ना, तो पिशुल कितने होने चाहिए, 64 पिशुल आएंगे तो हमारे पास 4 प्रक्षेप मिल जाएंगे, तो हमने ऑलरेडी 12 प्रक्षेप लिए थे, और यहाँ कितने लिए हमने पिशुल, 66 हो गए, तो दुगुना तो नक्की हुआ ना। ख्याल में आता है क्या कहना चाहते हैं, ये मध्यम कथन है, अभी ज्यादा हुआ तो और बताएंगे सूक्ष्म कथन में वो पिशुलों से प्रक्षेप बनाएंगे डायरेक्ट, देखो पिशुलों से प्रक्षेप बनाने, जैसे हमने 16 पिशुलों का एक प्रक्षेप देखा था, अब उसी को जो पिशुल डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू पिशुला पिशुल, यानी 16 पिशुला पिशुलों का एक पिशुल होता है और 16 ऐसे पिशुलों का एक प्रक्षेप होता है, 16 × 16 हाँ 256, 256 पिशुला पिशुलों का एक प्रक्षेप हो जाएगा। हमारे पास 220 है और इन एडिशन पिशुल भी इतने हैं, वो उसकी बात बाद में करेंगे। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं समाधान, नहीं क्योंकि पिशुलों की अपेक्षा उत्कृष्ट संख्या के भाग मात्र प्रक्षेप पाए जाते हैं, यथा उत्कृष्ट संख्यात के 3/4 भाग मात्र आगे जाकर स्थित संख्यात भाग वृद्धि स्थान में, उत्कृष्ट संख्यात के 1/3 भाग के संकलन प्रमाण पिशुल है, यानी 11 का संकलन है ना, 3/4 भाग को 1 कम कर दिया यानी 12 - 1 11 का संकलन किया, ऊपर उन्होंने निकाल के बताया था 66 आए थे, 1 को आदि लेकर 1 अधिक क्रम से स्थित उनका समीकरण करने में प्रथम स्थान के 1 पिशुल को ग्रहण कर अंतिम पिशुलों में मिलाने पर उत्कृष्ट संख्यात के 3/4 भाग मात्र पिशुल होते हैं। ये क्या कहते हैं देखो, मैं अकेली पढ़ती हूँ ना, मुझे नहीं ये समझ में आता, अभी समझ में आ रहा है आपको पढ़ाते समय। ये पिशुल कितने स्थानों में मिलाए हैं? पहले स्थान में तो एक प्रक्षेप ही मिलाया था, तो दूसरे स्थान से लेकर 12वें स्थान तक हमें 12 स्थानों में भी देखना है ना उसमें, तो 11 बार 1 यहाँ 2 यहाँ 3 4 इस तरह से 11, यानी यहाँ 11 जीरो कन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ 10, एक एक जीरो से बढ़ाते हुए हम 11 स्थान लिखेंगे। अब यहाँ कहते हैं समीकरण करना, उनको इक्वल कर दो सबको, इन 11 को लेकर निकाल कर इसके आगे रख दो, ये 1+11 हो जाएंगे, उसके नीचे 10 थे 2+10 कर दो, उसके नीचे 9 थे 3+9 कर दो, उसके नीचे 8 थे 4+8 कर दो, उसके नीचे 7 थे 5+7 कर दो और 6+6 कर दो। क्या हुआ, 6 स्थानों में ही 12-12 का प्रमाण आएगा। ये जो ऐसी रचना थी ना, उसको ऐसा कर दो ना ब्लॉक, समझ में आया, उसका 10 हमारे पास 11 स्थानों में दिया था, 11 स्थानों में पहले में 1 दूसरे में 2 तीसरे में 3 चौथे में 4 इस तरह से दिए थे, तभी तो हमने 11 का एक बार संकलन किया था। अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, समान डिस्ट्रीब्यूट, हाँ तो 12-12 करने के लिए क्या होगा उसकी बात है, तो 12-12 करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 अधिक क्रम से स्थित उनका समीकरण करने से, चौथी लाइन, प्रथम स्थान में स्थान के 1 पिशुल को ग्रहण कर अंतिम पिशुलों में मिलाने पर, उन्होंने अंतिम में मिला दिया, उत्कृष्ट संख्यात के 3/4 भाग मात्र पिशुल होते, 12 पिशुल मिल गया हमको। द्वितीय स्थान में स्थित 2 पिशुलों को ग्रहण कर 2 + 2 पिशुलों में मिलाने पर, यहां भी उत्कृष्ट संख्यात के 3/4 भाग मात्र पिशुल होते हैं। ये ख्याल में आया ना, 1 को निकालकर 11 के आगे रख दो तो 12 हो जाएंगे, 2 को उठाकर 10 के आगे रख दो तो 12 हो जाएंगे। द्वितीय स्थान में स्थित 2 पिशुलों को ग्रहण कर 2 + 2 पिशुलों में मिलाने पर, यहां भी उत्कृष्ट संख्यात के 3/4 भाग मात्र पिशुल होते हैं। तृतीय स्थान में स्थित 3 पिशुलों को ग्रहण कर तीन दो बार हुआ, तद्य ठाण ठिद तिन्नी पिसुलानी घेतुन ती चरिम पिसुलेसु तिमरु उणेसु पक्षित्ते। नौ है ये, बीच में एक तीन शब्द एक्स्ट्रा हुआ है। देखो, तृतीय स्थान में स्थित तीन पिशुलों को ग्रहण कर, तीन कम त्रिचरम चाहिए, तीन कम त्रिचरम बराबर है ना, त्रिचरम पिशुलों में मिलाने पर। ऊपर भी था ना, देखो द्वितीय स्थान के लिए हमने क्या लिखा, दो पिशुलों को ग्रहण कर दो कम द्विचरम पिशुलों में मिलाने पर। वहां दो कम थे ना, द्वितीय स्थान में से तीन पिशुलों को ग्रहण कर, देखो जैसे ऊपर लिखा है। तदीय ठाण ठिद तिन्नी पिसुलानी घेतुन ती चरम पिसुलेसु तिंगुरुणेसु, जिसमें तीन कम है उसमें ये तीन मिला दिए, ऐसा है, तीन कम वाले उसमें मिला दिया है। त्रिचरम में तीन नहीं कम करना है, त्रिचरम जो स्थान है उसमें तो बारह में तीन कम थे, उसमें ये तीन मिला दे ऐसे, यानी हर जगह बारह बारह हो जाते हैं। इस प्रकार सबका समीकरण करने पर, यानी सम सबको करने पर, उत्कृष्ट संख्यात के तीन चतुर्थ भाग आयत और एक कम तीन भाग के अर्ध भाग प्रमाण विस्तृत क्षेत्र होकर स्थित होता है। देखो आयत कितना हुआ, बारह का हुआ, और ऐसा कितना हुआ, छः हुआ, छः बाय बारह हुआ ना, बारह ग्यारह में थे, डिस्ट्रीब्यूशन ग्यारह में था, ग्यारह में से छः बनाए हमने, एक को ग्यारह के साथ मिला दिया, दो को दस के साथ मिलाया, लास्ट में छः को छः के साथ मिलाया था। हाँ तो छः और ऐसे बारह मिले तो कितने हुए, एक कम तीन भाग के अर्ध प्रमाण भाग, इस प्रकार सबका समीकरण करने पर उत्कृष्ट संख्यात के तीन चतुर्थ भाग आयत, तीन चतुर्थ भाग आयत कैसा हुआ, बारह हुए ना, आड़े ऐसे बारह हो गए, और एक कम तीन भाग के अर्ध भाग प्रमाण विस्तृत क्षेत्र होकर स्थित होता है। एक कम मैंने सोलह में से एक कम करेंगे, पंद्रह होगा, और उसका तीन भाग पांच हुआ, और उसका अर्ध भाग ढाई हुआ, ऊपर क्या लिखते हैं, एवं सवेशम समकरणे कदे उक्कस संख्ये जयस्य तिन्निवी दुभागायामम ऋण तिन्नी चतुभागद्ध विखंब खेतम होदुन चिट्ठदी, उक्कस संख्ये यस्य तिन्नी वधु भागायामम नहीं है, तिन्नी चतुभागायामम चाहिए, इसका ट्रांसलेट ऊपर भी गड़बड़ी और नीचे भी, थोड़ा पेंसिल से करेंगे। देखो एवं सवेशिम समकरणे कदे, नीचे उसका अर्थ है इस प्रकार सबका समीकरण करने पर उत्कृष्ट संख्यजयस्य उत्कृष्ट संख्यात के तीन चतुर्थ भाग आयत तिन्नी चतुर्भाग आयामम तिन्नी व दुभाग लिखा है ना, वो व का बदला चदु चाहिए, व और दु अलग अलग लिखा है ना, बीच में नहीं, वो व का च करो और उसको जोड़ दो दु के साथ, वधु के बदले चदु करो, एक शब्द है वो। तिन्नी चतुर्भाग आयामम चाहिए, देखो उसके लिए ये नीचे से चौथी लाइन में राइट साइड में एक शब्द है, देखो तिन्नी चतुर्भाग में त पिसुलानी लिखा है ना, जैसे चतुर्भाग लिखा है वैसे यहां भी तिन्नी चतुर्भाग चाहिए। समझ में आया क्या? पार्टी पर लिखो देवेंद्र भाई। हाँ क्या लिखा? हाँ बराबर, वो और दू लिखा है ना अलग अलग, वो ज्वाइन करके चदू लिखना है उसको, वो के लिखे च, तिन्नी चदू भागा आयामम चाहिए। एक बात, अब उसके आगे प्राकृति पढ़ेंगे। हिंदी में तो लिखा है कि उत्कृष्ट संख्यात के तीन चतुर्थ भाग आयत। अब ऋण, ऋण एन एक कम कितना? तिन्नी चतुर्भाग अर्ध विखंब, तिन्नी चतुर्भाग अर्ध विखंब है तो एक कम तीन भाग के नहीं, तीन चतुर्थ भाग के अर्ध भाग, तीन चतुर्थ भाग का अर्ध भाग यानी बारह का अर्ध भाग, तो बराबर होता है ना, तीन चतुर्थ भाग का आधा भाग चाहिए, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखो हमने कितना देखा था, ऐसे तो हमने एक दो तीन चार ऐसे ग्यारह तक जीरो थे, ग्यारह जीरो में एक मिलाए बारह हुए, दस में दो मिलाए, इस तरह से हमने छः कर दिए थे, तो छः क्या है? वो बारह का आधा है ना, यानी तीन चतुर्थांश का आधा है, बराबर। तो यहाँ कहते हैं चतुर्थ एक कम क्यों किया उन्होंने? ऋण तीन चतुर्भागद्ध विखंब खेतम, देखो हमने जरा गड़बड़ी तो नहीं की ना, एक ग्यारह तक हम गए थे, ये दस के आगे आठ के आगे एक को ग्यारह के साथ लिया, दो को दस के साथ, तीन को नौ के साथ, चार को आठ के साथ, पांच को सात के साथ, ग्यारह दस नौ आठ सात, हाँ मगर ये ग्यारह से लिखा लेते ना हमने, ग्यारह में से छह बनाए थे। समझ में आया? ग्यारह में से छह बनाए हैं, ग्यारह स्थान में। हाँ चतुर्थ भाग के तीन में से, हमने सम लिए छह के लिए, आगे कुछ है ही नहीं है। ग्यारह देखो ग्यारह दस नौ आठ सात और छह, छह स्थान हमने दो बार लिया था, वैसा नहीं लेना है, छह लिख रख दो, ऐसा ही छह अलग रख दो, छह अलग रख दो, इन्हें पांच स्थान में तो बारह बारह हो गए, छह अलग रह गए। देखो हमने एक से ग्यारह स्थान थे ना, बारह होते तो बराबर हो जाता, पूरा आयत हो जाता। हमने छठा स्थान दो बार लिया था, देखो वन टू थ्री फोर फाइव इतना ही लेना, और यहाँ ग्यारह दस नौ आठ सात, इसका तो बराबर बारह बारह पिछुल हो गए सब में, बराबर छः वाला अकेला रह गया है, क्योंकि ऑड नंबर है ना, ग्यारह इन्हें ऑड नंबर है इसलिए उसको अलग रखा, यानी साढ़े पांच हो गए, साढ़े पांच स्थान हो गए हैं। बारह आयत वाले कितने स्थान हुए? पांच तो पूरे बारह वाले हुए और एक छः वाला ही हुआ है, आधा ही हुआ है, यानी साढ़े पांच स्थान हो गए हैं। तो एक कम तीन चतुर्थ भाग का आधा यानी साढ़े पांच, एक कम चतुर्थ तीन चतुर्थांश यानी ग्यारह, और ग्यारह के आधे स्थान हो गए ना, बारह वाले स्थान आधे हो गए। इस तरह से ऊपर बाद में देखेंगे, पहले इसका घोटाला। हाँ देखो, एक कम तीन चतुर्थ भाग के लिखना, चतुर्थ शब्द रह गया यहाँ पर। हाँ उधर लिखो, आगे के पेज पर लिखो, कहीं भी लिखो। तीन चतुर्थ भाग के अर्ध भाग यानी 12 माइनस एक उसका डिवाइडेड बाय 2, ये साढ़े पांच हो जाएगा ना। हाँ ये कैसे कि हमने 11 प्लस 1, 10 प्लस 2, 9 प्लस 3, 8 प्लस 4, 7 प्लस 5 और 6 के लिए कोई नहीं रहे, वो 6 अकेला रह गया है। तो ये सारे 12 12 हो गए, 12 12 के 5 स्थान हुए और ये आधा ही रह गया। तो 12 इंटू 5 हो गए ना, और दूसरा ये आधे यानी साढ़े पांच स्थान हो गए 12 के। इस तरह से वह यह है। अभी संदृष्टि देखो, पहले वाली संदृष्टि तो स्थूल संदृष्टि उन्होंने बताई थी इस तरह से। अब कहते यहां पर ये तीन चतुर्थ भाग लिए हैं और उसके उन्होंने 12 12 बिंदी बनाई है, पांच लाइन ली ना। हाँ तो पांच, ये जो पहली लाइन है तो 11 प्लस एक वाली वो लाइन है, फिर 10 प्लस दो लिए, इससे ये 11 और दो क्या लिखा है वो पता नहीं चलता है वहां पर, ये 11 के आधा लिखा है, वो 11 द्वितीयांश है, वो साढ़े पांच लाइन बताना चाहते हैं। इन्हें भागाकार में बीच में लाइन नहीं लिखते हैं, जैसे तीन चतुर्थांश के बीच में लाइन नहीं लिखी है। नहीं समझे, उन्होंने स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर बनाया है तो ऐसे तो 11 द्वितीयांश लिए यानी साढ़े पांच, एक दो तीन चार पांच लाइन है ना, और छठी लाइन आधी है, और ऐसे आयाम ऐसा कितना है तो 12 है, 12 के बदले तीन चतुर्थांश, उत्कृष्ट संख्या का तीन चतुर्थांश लिखा है उन्होंने। अब यहाँ 11 द्वितीयांश लिखा तो यहाँ 12 भी लिख सकते थे, दैट इज इक्वल टू तीन चतुर्थांश, ये 12, 12 के बदले उन्होंने तीन चतुर्थांश लिखा और यहाँ 11 द्वितीयांश लिखा, साढ़े पांच हो ना। अब आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें से उत्कृष्ट संख्यात के चतुर्थ भाग विष्कम्भ, चतुर्थ भाग यानी कितना हुआ, चार, और उसके तीन चतुर्थ भाग आयाम के प्रमाण से छीलकर पृथक स्थापित करना चाहिए। कितना निकालना, 1/4 निकालना उसमें से, उत्कृष्ट संख्यात का चतुर्थ भाग। अभी हमारे पास ये ऐसी फिगर थी ना, ये 12 12 के थे, 1/4 लेना यानी चार लेना, 12 12 के चार लेना है, वो पृथक ले लेना, चार 1/4 लेना उसमें से। देखो क्या कहते हैं, इसमें से उत्कृष्ट संख्यात के चतुर्थ भाग विष्कम्भ और उसके तीन चतुर्थ भाग आयाम के प्रमाण से छीलकर पृथक स्थापित करना चाहिए। ये ऊपर जो लिखा है 1/4 और 3/4, यानी यहाँ पर 1/4 हुआ और नीचे 3/4 है, ऊपर 4 है और ऐसे 12 है, 4 × 12 है ना। पहले कितना था? 5.5 × 12, उसमें से 4 × 12 हमने निकाला अलग। देखो ऊपर के जो है उसके अभी दो भाग करना है। ऊपर कैसे था? 12, 12, 12 के कितने लाइन थे? 5.5 लाइन थी, उसमें से हमको 4 लाइन अलग निकालनी है। ये अलग निकाली और यह गए डेड लाइन रहेगी नीचे, तो 1/4 वाले ऊपर निकाले अलग, यानी 4/12 निकाल दिए और यहाँ बाकी रहेगी। यहाँ पर अब कहते देखो वह यह है, मूल में देखिए, जो ऊपर जो अभी हमने बीच वाली जो संदृष्टि है वो मूल में देखिए। शेष क्षेत्र कितना बचा? उत्कृष्ट संख्यात के 3/4 भाग आयत और उत्कृष्ट संख्यात के ही अर्ध अंक से कम 8वें भाग विस्तृत क्षेत्र होकर स्थित होता है। आठवें भाग उत्कृष्ट संख्यात के ही अर्ध अंक से कम, अर्ध अंक है ना, 1/2 से कम 8वें भाग विस्तृत क्षेत्र होकर स्थित होता है। 16 का 8वां भाग कितना है? 2, उसमें से आधा कम कर दो, डेढ़ है ना, डेढ़ के लिए हम 12 अष्टमांश लिखा। एक्चुअली यहाँ दोनों लाइन में पूरे 12 बिंदी लिखे ना, उसके बदले 6 बिंदी यहाँ और ऊपर 12 बिंदी चाहिए थे। तो 12 अष्टमांश होते हैं, यानी 1 पूर्णांक 1/2। ऊपर कितने? 4 लाइन थे, अभी डेढ़ लाइन ऐसे रहेगी और ऐसे 12 रहेगी। नहीं देखो ऊपर जो 12 जीरो और नीचे 6 जीरो ही होने चाहिए था संदृष्टि में, 8 के आगे 6 जीरो होने चाहिए। ये 12 अष्टमांश तो उन्होंने बताया, उत्कृष्ट संख्यात का कितवा भाग रह गया है? 12 अष्टमांश ने 1.5 गुना रह गया है, डेढ़ रह गया ना, 16 में से 1.5 रह गया। देखो संदृष्टि के पहले यहां देखो, हमने ऐसे पिशुलों में से हमको करनी थी तो 12-12 का एक एक ग्रुप किया हमने, तो ऐसे हमारे पास उत्कृष्ट संख्यात के कितने भाग मिल गए? तो 5.5 मिल गए, पिशुलों में से 5.5 मिल गए। टाइम हो गया, कल फिर इसको देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो